ஆணம் பிரணமோ சித்தானம் நமோ ஐரியானம் பிரணமோ வஜ்யாயானம் நமோ லோய சர்வசாமம் ஹேசோ பஞ்சணமோய சர்வ பாவப்பனாசம் மங்களானம் சர்வ பரமம் சத்தாரி மங்களம் அரிஹந்தா மங்களம் சித்தா மங்களம் சாஹு மங்களம் கேவலி பணத்தோ தம்மோ மங்களம் சத்தாரி லோகுத்துமா அரிஹந்தா லோகுத்துமா சித்தா லோகுத்துமா சாஹு லோகுத்துமா கேவலி பணத்தோ தம்மோ லோகுத்துமோ சத்தாரி சரணம் பவஜாமி அரிஹந்தே சரணம் பவஜாமி சித்தே சரணம் பவஜாமி சாஹு சரணம் பவஜாமி கேவலி பணத்தம் தம்மம் சரணம் பவஜாமி மோக்ஷ மார்கஸ்ய நேதாரம் பேதாரம் கர்ம பூவ்ரதாம் வ்யாசாரம் விஸ்வ தத்வானாம் வந்தே தத்குண லப்தே வந்தே தத்குண லப்தே विगत कुछ दिनों से अपनी यहाँ चर्चा आठ कर्मों के संदर्भ में चल रही है कि जैन दर्शन ईश्वर कर्तृत्व की मान्यता नहीं रखता। यहाँ संयोगों का मिलना और चले जाना ये कर्म के उदय के निमित्त से होता है। मैं ये बात भी नहीं कहना चाहता कि कर्म उन सबका करता है, क्योंकि सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर कर्मों में और उन पदार्थों में भी परस्पर अन्योन्य भाव है। इसलिए वे कर्म उन बाहरी पदार्थों के कर्ता भी नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी व्यवहार की भाषा में या निमित्त निमित्तिक संबंध देखते हुए कहें तो कर्म के उदय के निमित्त से संयोगों की प्राप्ति होती है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीन प्रकार के कर्म हमने यहाँ देखे थे और उनमें भाव कर्मों के कोई भेद नहीं बतलाए गए शास्त्रों में, नौ कर्म के भी कोई भेद नहीं बतलाए गए, सिर्फ स्वरूप बतलाया गया। नौ कर्म माने संयोग है ना। मैं बार बार में संयोग शब्द का प्रयोग करता हूँ, आप लोगों को भाव भाषण तो होता है संयोग क्या चीज है। जो कुछ भी मिला है हमारे को, जो भी पदार्थ हैं, वे सब के सब संयोग हैं। उन सब के लिए एक शब्द का प्रयोग करें तो कहेंगे नौ कर्म। नौ कर्म माने कर्म के उदय के निमित्त से जो मिले वो सब नौ कर्म, ठीक है। दूसरे प्रकार का कर्म बतलाया वो था भाव कर्म, परिणाम, विचार, थॉट प्रोसेस, अपना जो भी हमारा चिंतन चल रहा है सबका सब क्या है, भाव कर्म, ठीक है। अब तीसरा है वो है द्रव्य कर्म, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो हमारे भाव हुए और जो पदार्थ मिले उन दोनों के बीच में उनको जोड़ने वाली एक और कड़ी चाहिए, उसके बिना वो पदार्थ नहीं मिल सकता। ऐसा नहीं होता है कि हमारे मन में किसी वस्तु को ग्रहण करने का भाव आया और वो वस्तु मिल गई। उनके बीच में एक और कड़ी है, उस कड़ी का नाम है द्रव्य कर्म, जो जोड़ने का काम करती है। माने हमारे भाव, भावों से बंधा कर्म, अब वो कर्म बंधने के बाद में जब कभी भी उदय में आएगा तो जो कुछ मिला उस कर्म के उदय में वो नौ कर्म, और जिसके उदय में मिला था वो द्रव्य कर्म, वो द्रव्य कर्म जिससे बंधा था वो भाव कर्म। कल मुझसे किसी ने पूछा कि ये कर्म जो है, शायद आप पूछ रहे थे कि ये कर्म क्या पिछले जन्म के ही हमारे को फल देते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि इस जन्म के कर्म भी हमारे को फल दे दें? हो सकता है। इस जन्म की बात नहीं कह रहा, हम कह रहे हैं तत्काल फल दे सकते हैं। उसमें अंतर्मूर्त का अवादा काल तो पड़ेगा, लेकिन बहुत फास्ट हो सकता है। इधर हमने कुछ किया और उधर हमारे को सजा मिल गई। आप सोचिए, यदि कर्म सिद्धांत ना हो तो हमारी पूरी की पूरी फिलॉसफी फैल हो जाए। क्यों? क्योंकि पाप करने वाले व्यक्ति वैभव संपन्न दिखाई देते हैं, जो सप्त व्यसनों में पारंगत हैं उनके पास में अपार धन संपदा दिखाई देती है, ऐशो आराम में घूमते हुए दिखाई देते हैं, और जो धर्म कर्म करते हैं उनके ऐसा पाप दिखाई देता है, उनके ऊपर संकट दिखाई देते हैं, उनको परेशानियां दिखाई देती है। तो बताओ हमारे, आप देखिए श्रीमद जी को देखते हैं, अपने को ऐसे लगता है कैसा शरीर था इनका, मतलब कितने कमजोर थे। तो शारीरिक दृष्टि से कमजोर थे कि कर्म के उदय का काम, लेकिन वो कर्म का उदय दुखी नहीं कर सकता। शरीर कमजोर है लेकिन आत्मा बलवान है, अंदर से बलवान है। तो हम किसे देख रहे हैं? आप कांजी स्वामी की बात करिए, गुरुदेव को अंत समय में कैंसर हो गया, किसी भी व्यक्ति की, बनारसी दास जी की बात करें, टूडरमल जी की बात करें, हाथी के पैर के नीचे उनको कुचलवा दिया गया, बनारसी दास जी के अंत में लास्ट समय में पैरालिसिस हो गया था, उनके हाथ भी नहीं हिला सकते थे, ऐसी दशा थी। बहुत दिखेगी आपको। कोई जरूरी नहीं है कि धर्म करने वाले व्यक्ति के वर्तमान में बहुत पुण्य का उदय दिखाई दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि धर्मात्मा व्यक्ति बहुत वैभव संपन्न हो, उसके ऊपर संकट नहीं आएगा, पाप कर्म का उदय नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत पाप करने वाला व्यक्ति कि वो रोता रहेगा, पाप कर रहा है लेकिन फिर भी मजे से बुचड़खाने खोल रखे हैं। सोचिए आप, हिंसा के व्यापार करते हैं, घोर हिंसा होती है उसमें, और फिर भी मजे से पूरी जिंदगी बिताते, और पूरी लाइफ में लास्ट मोमेंट तक उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं दिखाई देती। तो लोग तो ये कहेंगे कि देखो पाप करो और मजे से रहो। यदि ये कर्म सिद्धांत नहीं होता तो ये सारी की सारी बातें झूठी हो जाती, हमारी मान्यता जो है वो विपरीत हो जाती। हम यही मानने लगते हैं कि पाप कर, अरे कुछ नहीं होता पाप पुण्य, क्या होता है पाप पुण्य, ये सब बेवकूफों की बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, कुछ धर्म वर्म कुछ नहीं होता है, मजे से करो, लोगों को बेवकूफ बनाओ और खूब पैसा बनाओ, क्योंकि कर्म तो कुछ होता नहीं है, फिर क्या होगा। लेकिन भाई साहब, ये कर्म सिद्धांत ये कहता है, वर्तमान में यदि आप पाप कर रहे हैं और यदि आपके पास में सर्व अनुकूलताएं हैं, सारे संयोग आपको मिले हुए हैं, तो ये मत समझ लेना कि वो पाप के फल में आपको अच्छे संयोग मिले। उस पाप का फल तो आगे मिलेगा। मैंने सोचिए, ये श्रद्धा के लिए कितना जरूरी है कर्म सिद्धांत को समझना। यदि ये कर्म फिलॉसफी नहीं होती तो हमारी श्रद्धा विचलित हो जाती, हमें कौन विश्वास दिलाता, धर्म में श्रद्धा किसकी होती यदि ये कर्म सिद्धांत नहीं समझते तो। हम सिर्फ लाल रंग में उलझे रहते, हम कहते खाओ पियो मौज करो, बाद में मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः, चुकाने वाले चुकाते रहेंगे, कर्ज करो घी पियो मजे से, ऐसे आराम से रहो, ऐसा कहते हैं सब। दुनिया में एक है ऐसा दर्शन जिसका नाम है चार्वाक दर्शन, आप लोगों ने नाम यदि सुना हो तो, चार्वाक नाम का एक दर्शन है, जैसे जैन फिलोसफी है उसी तरह से वैदिक दर्शन है, वैशेषिक है, नैयायिक है, मीमांसक है, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, ऐसे ये चार्वाक दर्शन है, जैसे बौद्ध दर्शन है, जैसे चार्वाक नाम का भी एक दर्शन है। तो क्या कहते हैं, उन लोगों की मान्यता क्या है? यावत जीवेत सुखम जीवेत, उनका सूत्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। नहीं समझ में आया? जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर के भी घी पियो, क्योंकि ये देह तो भस्म हो जाएगी, दोबारा आगमन कुछ होता नहीं है। कितना भी कर्ज लिया हो, चुकाने वाले चुकाते रहेंगे, तुम्हारे को काय की टेंशन है, तुम तो ले और मस्ती से रहो। ऐसे पुनर्जन्म को नहीं मानने वाले, ऐसे जो ऐसा मानते हैं कि अगला जन्म नहीं है, जो ये मानते हैं नवीन जन्म नहीं होता, वो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। और ये चारवाक दर्शन वाले आपको कहीं इधर उधर नहीं मिलेंगे, अपने आस पड़ोस में मिल जाएंगे, अपने घर में मिल जाएंगे। भाई चारवाक कौन? जिसका जन्म चारवाक कुल में हुआ हो। जैन कौन? जिसका जन्म जैन कुल में हुआ हो। ये पूरी की पूरी फिलॉसफी अपने विचारों से चलती है, आपकी मान्यता कैसी है। जो जैन सिद्धांतों को माने वो जैन, जो जैन धर्म को स्वीकारे वो जैन, जो नहीं मानता है वो जैन नहीं है। जैन किसको कहेंगे अपन? सर यही गणित चलेगी, यही फॉर्मूला चलेगा सब जगह। सुदर्शन सेठ समझ लीजिए, और कोई इंद्रभूति गौतम हिंदू थे, ब्राह्मण थे, तीर्थंकरों के अंदर क्षत्रिय थे लगभग सभी। आप देखेंगे आपको ऐसे लगेगा कि वो जैन तो थे ही नहीं, लेकिन उन्होंने जैन धर्म को अपनाया, ये जो जैन सिद्धांत हैं उनको उन्होंने अपने जीवन में उतारा तो वे जैन। इसी तरह से हम ये कहते हैं, हमारे कुल में जन्म लिया और हमारा बेटा ये कहता है, मान लीजिए, अरे पापा किसने देखा ये, क्या आप जी स्वर्ग नरक के चक्कर में फंस गए, कुछ दम नहीं है इसमें, आप तो मौज मस्ती से रहो, जो होना है सब यही यही स्वर्ग है और यही नरक है, जो होता है सब यही हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि वे जैन नहीं है, वे चारवाक है। ऐसी स्थिति में पाप से बचाना मुश्किल हो जाता, इसलिए ये कर्म सिद्धांत को एक बार समझ लिया तो हमारी श्रद्धा विचलित नहीं होती कि नहीं अभी पाप करते हुए भी इसको अनुकूलता दिख रही है ना, इसको पता नहीं है जब फल भोगेगा तब क्या होगा, इसका फल मिलेगा, आज नहीं मिले परभव में मिलता है। इस जन्म में ना मिले परभव में मिलता है, अपने पुण्य और पाप का फल सबको मिलता है। कोई जरूरी नहीं है कि अभी मिले, हो सकता है परभव में मिले, और हो सकता है परभव में ना मिले और इस जन्म में मिल जाए। कभी वर्षों लग जाते हैं, कभी मिनटों में हो जाता है। नहीं होता है हमारे यहाँ, आपके यहाँ तो नहीं होता, हो सकता है आपके यहाँ तो कोर्ट में फैसले जल्दी हो जाते होंगे अमेरिका में, लेकिन हमारे यहाँ तो कभी कोई आ जाए चक्कर में तो तुरंत फैसला हो जाए, और कोई नहीं आए तो वर्षों तक फैसला नहीं हो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोर्ट में केस करने वाले मर गए और केस अभी तक चल रहा है, 60 साल हो गए, कोई लड़ने वाला ही नहीं है, फाइल खुली है, चल रहा है। कैसी कैसी स्थिति होती है। लेकिन यहाँ कर्मों के प्रकरण में बिल्कुल रंच मात्र भी अन्याय नहीं है, कर्म किसी के नहीं सुनते, कर्मों में भ्रष्टाचारी नहीं है, कर्मों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, कर्म रिश्वत नहीं लेते, कर्म किसी के नहीं सुनते, कर्म किसी के सगे नहीं है, कर्म किसी के रिलेटिव नहीं है, कर्मों में किसी की रिक्वेस्ट नहीं चलती, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है सब, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। मतलब जैसे आप लोग कभी किसी रिटेल स्टोर पर जाते हैं और वहां परचेजिंग करते हैं कि कितना डिस्काउंट मिलेगा, क्या मिलेगा, नो बार्गेनिंग का, ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है, कंप्यूटर जितना दिखाएगा उतना आपको पे करना पड़ेगा, यू हैव टू पे, मतलब उसमें आपने बिल्कुल नहीं चलेगी। इधर भी तो ऊपर से होता है और हमारे प्रोग्रामिंग सेट रहता है, वो जो शॉपकीपर वहां खड़ा हुआ है वो कुछ नहीं कर सकता है, उसमें ऑटोमेटिक प्रोग्राम सेट है ना, उसमें किताब इसमें लिखा हुआ इतना है, ये इतना है साहब, ये हमने इसके ऊपर मशीन लगाई और ये इतना शो कर रहा है, इतना डिस्काउंट, इतना टैक्स और इतना, ये सब ऑटोमेटिक, इतना आपको पे करना पड़ेगा, एक सेंट भी आगे पीछे नहीं हो सकता। वहां तो फिर गड़बड़ी होने के चांस है मशीन में तो, लेकिन कर्मों का कंप्यूटर इतना सूक्ष्म काम करता है कि एक एक सेकंड का हिसाब, एक एक सेकंड का, मतलब एक समय के लिए भी आपका उदय बढ़ाया नहीं जा सकता, पुण्य के उदय को बढ़ा नहीं सकते और पाप के उदय को घटा नहीं सकते। समयो एक बढ़े नहीं घटती, जो सुख दुख की पीड़ा रहे, एक समय मात्र के लिए भी उदय को घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता है। वो उदय कैसा मिलेगा, जैसा बांधा था, किसी और का नहीं है। कोई दूसरा उसमें बदल देवे, किसी के आशीर्वाद से काम हो जावे, ऐसा नहीं होता। इस संदर्भ में हमने ज्ञानावरणी कर्म की चर्चा की, दर्शनावरणी कर्म की चर्चा की, ज्ञान के ऊपर आवरण और दर्शन के ऊपर आवरण। आप क्या समझ पाएंगे, कितना समझ पाएंगे, आप में समझने की कितनी योग्यता है, आपकी योग्यता का कितना डेवलपमेंट होगा, आपकी ग्रास्पिंग पावर कितनी होगी, आपकी मेमोरी कितनी होगी, ये सारी की सारी बातें ज्ञानावरणी कर्म के ऊपर डिपेंड करती है। और यदि आप इन सब चीजों को बढ़ाना चाहते हो तो बी अलर्ट, हमारे माध्यम से विराधना ना हो, जिनवाणी की विराधना ना हो, हम अपशब्द न कहें, हम जिनवाणी को झूठे हाथ से न छुए, झूठे मुंह ना बोलें, ठीक है ना, यदवा तदवा ना रखें, पटने न देवें, संभाल कर रखें, कोई पढ़ रहा हो तो उसकी विनय करें, ठीक है ना, उनका सम्मान करें, पढ़ने वालों की अनुमोदना करें, पढ़ने के लिए यदि कोई व्यक्ति कुछ मांगता है तो उनको सहज प्रदान करें, कोई व्यक्ति कुछ पूछता है और हमें यदि वो बात आती है तो हम उसे बहुत सरलता से समझा देवें, अपने ज्ञान का अभिमान न करें और दूसरे व्यक्ति को ज्ञान में हीन न समझें। ये उपाय बतला रहा हूं मैं आपको, हर फील्ड में लागू होगी ये बात। अच्छे से अच्छे बड़े डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, होंगे आप लोगों में से कई, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी योग्यता कम है, लेकिन यदि आपने अपनी उस योग्यता का अभिमान किया, ज्ञान का अभिमान किया, तो समझ लीजिए आपका वो ज्ञान अब धीरे धीरे डाउनफॉल चालू हो गया उसमें, क्योंकि वो कर्म अपना रिएक्शन दिए बिना नहीं रहेंगे। आप देखिए जिन लोगों के यहां चर्चा चलती थी हमारी महेंद्र भाई से, कई बार ऐसा देखते हैं अपन, वैभव बहुत है, पैसा बहुत है, लेकिन ज्ञान की आराधना नहीं होती, तो देखो आप मंद बुद्धि दिखाई देते, क्षयोक्षमहीन है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं पाते हैं, पढ़ाई में कमजोर हैं, इंटेलिजेंट नहीं है, कि क्यों हो रहा है ये सब ऐसा, क्योंकि वहां ज्ञान की आराधना होती है। और यहां ज्ञान की आराधना होती है, बाहर में वैभव मिले या ना मिले, सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, ज्ञान समाधान कारक है, ज्ञान सुख प्रदान करने वाला है, इसलिए ज्ञानावरणी कर्म की बात कही, दर्शनावरणी कर्म की बात कही, अंतराय कर्म की चर्चा की हमने, जो बाधक कारण उपस्थित होते हैं वो सब अंतराय कर्म के उदय से होते हैं, और हम किसी के लिए बाधक ना बने किसी भी चीज में, दान देने में नहीं, इन कर्मों के लिए अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स दिए हैं शास्त्रों में। ज्ञानावरणी कर्म के लिए एग्जाम्पल दिया है पर्दे का, आवरण, पर्दा, जिस तरह से किसी चीज के आगे कोई पर्दा लगा हुआ हो, और यदि वो पर्दा बहुत गहरा है, मोटा है, भारी है, तो समझ लीजिए या पीछे की चीज नहीं दिखती, क्लियर नहीं दिखती, और जैसे जैसे वो पर्दा कमजोर होगा, पर्दा पतला होगा, तो पीछे की वस्तु क्लियर दिखेगी। मेघ पटल है, सूर्य के ऊपर बादलों का आवरण आ गया है, बादल जितने घने होंगे सूर्य का प्रकाश उतना कम दिखाई देगा, और बादल जितने कमजोर होंगे पीछे से सूर्य का प्रकाश भी उतना ही दिखाई देगा। ये ज्ञान सूर्य का प्रकाश भी ज्ञानावरणी कर्म रूपी पर्दे के कारण ढकता है, आवरण कम होता है, प्रकाश बढ़ता चला जाता है। दर्शनावरणी कर्म के लिए उदाहरण दिया गया द्वारपाल का, चौकीदार मिलने नहीं देता, मना करता है, बाहर से ही रोक देता है, कोई व्यक्ति बाहर आया और उसको बाहर से भेज दिया, तो दर्शन करने में, मिलने में जो बाधा उत्पन्न करे उसका नाम दर्शनावरणी कर्म। अंतराय कर्म, इसके लिए एग्जाम्पल दिया है खजांची का, کیشیئر کا، راجہ کے راج دربار میں کوئی خزانچی بیٹھا ہوا ہے اور کوئی آیا ڈیمانڈ کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے، رکشا کے لیے، اور راجہ کا بھاؤ تھا $100 دینے کا، تو خزانچی کہتا ہے ارے مہاراج کیا کرتے ہو آپ، اتنا کی کہاں حیثیت ہے، تو $40 میں چل جائے گا کام. دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، اس ویکتی کو ملنے میں بادہ، یہ انترائے کرم کے لیے ادھارن دیا. راجہ کے پاس اپار خزانہ ہے، راجہ کا دینے کا من ہے، اور اس خزانے میں سے تھوڑا بہت دے دیا تو راجہ کے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور تیری جیب سے جانا نہیں ہے، تیری جیب میں بچنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی من میں یہ بھاؤ اس کو کیوں دے رہے ہیں، اس کو کیوں مل رہا ہے، اس کو نہیں مل جائے. ایسا جو بھاؤ ہے وہ بھاؤ کہلاتا ہے انترائے کرم باندھنے والا بھاؤ. خزانچی کا ایگزامپل دیا، میں کسی کیشیئر کے اوپر آکشیپ نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو سنستھا کے کیشیئر ہیں ان کی تو جواب داری بنتی ہے کہ سنستھا میں یا ٹرسٹ میں اپنے کم سے کم خرچہ ہو، وہ دھیان رکھیں، وہ ساودھانی رکھیں، بات ان کی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کسی کا نہیں ہے، اپنے باپ کا نہیں ہے، وہ کسی ایک ویکتی کا نہیں ہے نا، وہ تو سب کا مل کر کے ہے. مان لیجیے جین سینٹر کا ٹرسٹ ہے اپنا، تو وہ سب کا مل کر کے ہے، تو اپن سب کی جواب داری بنتی ہے کہ اس میں کم سے کم خرچہ ہو اور کم خرچے کے اندر بیٹر کام ہو، بات وہ نہیں ہے. لیکن بات تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی منیم بیٹھا رکھا ہے اپنی دکان پر اور آپ کا بھاو ہے کسی غریب ویکتی کا سہیوگ کرنے کا، آپ کرنا چاہتے ہیں. اب وہ منیم جی کہتے ہیں ارے آپ بھی کیا بات کرتے ہو، اتنا سا دے دو آپ کو، ہاں نبٹ جائے گا کام. پھر آپ کا بھی من میں ہو جاتا ہے، ابھی کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، 100 دینا چاہتے تھے 40 دے دو، کوئی بات نہیں. تو اس میں جو بادھا اتپن ہوئی لابھ کے لیے، وہ انترائے کرم بندھن کے لیے ایگزامپل دیا گیا. کتنے ہو گئے، گیانورنی درشناورنی انترا. ایک کرم بتلایا موہنی ہے، میں بندھن تو اس ویکتی کے ہوا جو منع کر رہا ہے، اور ادے اس ویکتی کے جس کو کم ملا ہے، جو کم ملا ہے، جس کو کم ملا ہے اس کے انترائے کرم کا ادے ہے. دینے والے ویکتی کے بھی جتنی ماترا میں پرینام ہوئے، دیکھیے یہاں ایسا ہے کہ بہت اس میں وہ پڑھتے ہیں، بھید پڑھتے ہیں، جس ویکتی کے جیسے پرینام ہوں گے ویسا پھل ملے گا، کیونکہ کرم کا ادے ایک جیسا نہیں ہوتا. فار ایگزامپل میں بات کروں کہ نام کرم کے ادے سے شریر ملتا ہے، اپن کل کریں گے اس کے بارے میں ڈسکس. نام کرم کے ادے سے شریر ملتا ہے، ہم سب کے نام کرم کا ادے ہے، ہم سب کے منشیہ نام کرم کا ادے ہے، بٹ سب کی شکل ایک جیسی نہیں ہے. اب کتنے طرح کا ہو گیا، مطلب یہ جو انتر دکھائی دے رہا ہے، گیانورنی کرم کا ادے سب کے چل رہا ہے لیکن سب کا شیوکشم ایک جیسا نہیں ہے، سب تینی پنچندری ہیں لیکن سب برابر نہیں ہے، سب کے ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں لیکن پانچوں انگلیاں برابر نہیں، پانچوں تو برابر ہے ہی نہیں، لیکن ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ جیسا نہیں ہے، ہاتھ کی ریکھائیں یہ برابر نہیں ہیں. جن کو پامیشتی کا گیان ہے وہ دیکھ کر کے بتلا دیتے ہیں کہ یہ ریکھا اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہے، یدپی ہاتھ کی ریکھاؤں سے بھوشیہ کا سمبندھ نہیں ہے، اسے انڈیکیٹ کرتا ہے ماتر جانکاری ماتر ہے کہ اس سے ایسا ہونے کی سمبھاونا دکھ رہی ہے، وہ کچھ کرتا نہیں ہے. ہم باہر میں فیر پار کر کے ایسا سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ ہو جائے گا، آپ بہت بڑے دھوکے میں ہیں. ابھی اپن بات کرنے والے ہیں ویدنی کرم کے سندرو میں، تو ابھی ہم نے بات کری گیانورنی کا ایگزامپل دیا، کس کا پردہ، درشناورنی ہے دوارپال، انترائے کیشیئر خزانچی، اور موہنی ہے شرابی. شراب کے نشے میں جس طرح سے اسے ہتاہت کا بھان نہیں ہوتا، بھلے برے کا وچار نہیں ہوتا، کچھ ہوش نہیں رہتا، ٹھیک اسی پرکار یہ موہنی کرم بھی ہمارے کو بے چیت کرنے کا کام کرتا ہے. موہ کرم کے ادے میں پر وستوؤں میں ایکتو بدھی ہوتی ہے، یہ درشن موہ. چارتر موہنی کرم کے ادے میں کشائے پرورتی ہوتی ہے، چارتر موہنی کس کا نام، کشائے کرودھ، چارتر موہنی کرم کے ادے میں گسا کیا नया चारित्र मोहनी कर्म बंधा, तब उसका उदय आएगा तो क्रोध के निमित्त मिलेंगे। और वर्तमान में आपने शांत परिणाम रखे तो मंद कर्म का बंधन होगा, तीव्र कर्म का बंधन नहीं होगा। तो ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि अपन क्या कैसे परिणाम कर रहे हैं। वो चारित्र मोहनीय है, ये चार कर्म हुए। अभी अपन बात करते हैं वेदनीय कर्म के संदर्भ में। वेदनीय, वेदन फीलिंग, वेदनीय नाम का कर्म, क्या काम करता है ये कर्म? वेदनीय कर्म दुख नहीं, साता भी नहीं, दोनों साता भी और असाता भी, दोनों का जो वेदन हो रहा है वो वेदनीय नाम के कर्म के उदय से है। ऐसा कहा जाता है नॉर्मली कि जितने संयोग हमें मिलते हैं उन सब संयोगों में मुख्यतः वेदनीय कर्म का उदय निमित्त है। साता वेदनीय कर्म से अनुकूल संयोग मिलते हैं, असाता वेदनीय कर्म के उदय से प्रतिकूल संयोग मिलते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये जो संयोग मिले ये हमारे कमाने से आए हैं, सच में ऐसा ही है। कितना बड़ा मिथ्या मान्यता है हमारी, हमें ऐसा लगता है कि मैं पैसा कमाता हूं, हम नहीं कमाते हैं पैसा। अभी किसी व्यक्ति को समझाओ तो आसानी से समझ में नहीं आती, कौन समझे इन बातों को, कौन समझ सकता है भैया? अटपटी सी लगती होगी बात, कभी सुनी नहीं है ऐसी लगती होगी। ये जो मिला है ये कर्म के उदय से मिला है, हमारे वर्तमान पुरुषार्थ से नहीं। आप कितना पुरुषार्थ करें कि आपके पास में पैसा आ जाए, पर सच में पैसे का आना और वो पुरुषार्थ, इन दोनों में अत्यंत अभाव है। क्योंकि पैसा पुद्गल द्रव्य है और तेरा पुरुषार्थ तेरे में चलता है, पैसे में तेरी चलती नहीं है। लाख प्रयास करे पैसा कमाने के लिए, देखिए मैं आपको एक बात बहुत बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुत लोग कोशिश करते हैं, बिजनेस जो कोई भी व्यक्ति करते हैं वो मुनाफे के लिए करते हैं कि लॉस के लिए करते हैं? हर व्यक्ति जो कोई भी बिजनेस करेगा सिर्फ प्रॉफिट के लिए, हर व्यक्ति प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो जितने लोग बिजनेस करते हैं सबको प्रॉफिट ही होता होगा, नहीं? क्यों? बिजनेसमैन लोगों को प्रॉफिट नहीं होता? ये तो किस्मत अपनी अपनी। क्यों? एक व्यक्ति वही बिजनेस लगाता है उसी जगह पर और दूसरा व्यक्ति उसी जगह पर बैठ करके और वही बिजनेस लगाता है। एक ने दुकान हटाई है और दूसरे ने दुकान लगाई है, उसकी दुकान नहीं चलती थी और इसकी दुकान चलती है, बोलो। बराबर में दो दुकानें और दो में से एक बहुत चलती है और एक बिल्कुल नहीं चलती है, क्या कारण है उसका? पता नहीं हमारे भी माइंड में क्या होता है, उस दुकान पे भी मिलता है लेकिन उस दुकान को छोड़ करके पता नहीं क्यों हमारे कदम आगे वाली शॉप पर ही जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? एक का बिजनेस बहुत चलता है और एक का बिल्कुल नहीं चलता है। सामान एक जैसे रखता है, क्वालिटी एक जैसी है, रेट भी एक जैसी है, दिशा भी एक जैसी है, जिस जगह बैठा है वास्तु मैंने दिशा कहा तो आपके नहीं समझ में आया, वास्तु तो सबके समझ में आता है क्योंकि अपने सबके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि वास्तु के हिसाब से काम होता है, वास्तु के हिसाब से काम होता है कि नहीं। इसलिए मैंने दो तीन बार जोर देकर के ये बात कही कि एक ही दिशा में दुकान है, एक ही फेसिंग है दोनों दुकानों की, दोनों ही दुकानें साउथ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट नॉर्थ जो कुछ भी समझो आप, जिसको बुरा समझते हो वो समझ लो, फिर भी एक व्यक्ति की दुकान चलती है दूसरे की नहीं चलती है, दोनों का काउंटर एक ही दिशा में है, क्या चक्कर है, क्या कारण है उसके पीछे? पता नहीं क्यों आजकल समय के समय में ये वास्तु कुछ 5-7 साल से ज्यादा ही लोगों के दिमाग में चढ़ा है। घर में तोड़फोड़, दुकान में तोड़फोड़, सुख शांति के नाम पर तोड़फोड़ ही चलती रहती है। मुझे समझ में नहीं आता तोड़फोड़ से सुख शांति कैसे होगी, शांति में तो शांति मिलती है, लेकिन इसको तोड़ो, ये करवाओ, इससे ऐसा करवा लो, इसका मुख इधर मोड़ लो। और पता है सारे वास्तु टिप्स जितने भी मिलते हैं सब पैसे वालों के लिए मिलते हैं, गरीब की झोपड़ी को कोई टिप्स नहीं देता कि भैया तेरी जो झोपड़ी है ना, झोपड़ी का मुख इधर कर ले, देख तेरे यहाँ झोपड़ी की जगह महल खड़ा हो जाएगा। क्योंकि सब जानते हैं क्या वो देगा नहीं ना कुछ वो क्या देगा, और इनके तो फर्क नहीं पड़ता। और ये आसानी से इनको लगता है कि हाँ इनके तो तोड़ फोड़ भी कराते हैं, इसको इधर करा लो, इसको उधर करा लो। कुछ नहीं है वास्तु, सिर्फ हमारा मिथ्या भ्रम है। मैं एक बात कहता हूं कि कर्म का उदय नहीं बदल सकता, जगह बदल लेने से और दिशा बदल लेने से आपका उदय नहीं बदल जाएगा। और उदय बदलना होगा तो वो भी सब बाहर में हो जाता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। उदय के आगे मकान की नहीं चलती। कोई व्यक्ति कहते हैं साहब हमने गाड़ी जब से ली है ना, सबसे तो हमारे बिजनेस चमकने लग गया, गजब हो गया। गाड़ी का बिजनेस से क्या लेना देना, लेकिन गाड़ी खरीदी है तो बिजनेस चल रहा है। कोई कहते हैं जब से इसका जन्म हुआ है ना तो ये बहुत भाग्यशाली है, इसके जन्म से ही हमारे देखो आप घर में बरकत आ गई। किससे से कोई लिंक नहीं है भैया, सबका उदय अपना अपना है। और वास्तु आप समझते ही नहीं है, वास्तु की चर्चा भी है हमारे यहाँ शास्त्रों में, लेकिन वास्तु का वास्तविक अर्थ ये है कि जिससे आपका धर्म साधन आसानी से हो सके, उसका नाम वास्तु है। इसके अलावा और कुछ नहीं है वास्तु। धर्म वास्तु उसका नाम है, घर में पर्याप्त रोशनी आ सके, सनलाइट आ सके। आपकी किचन यदि समझ लीजिए आप आग्नेय दिशा में है, कौन सी कहलाती है, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में किचन क्यों बोलो, इसलिए कि साउथ ईस्ट ही एकमात्र ऐसी दिशा है जिस दिशा से सन राइज होने से लेकर के सनसेट तक वो सबसे ज्यादा उस दिशा को प्रभावित करेगा, वो वही एक कोना है। आपके किचन में पर्याप्त प्रकाश आ सके, रोशनी आ सके, आप भोजन बनाएं तो उसको ढंग से देख सकें, सोच सकें, उसके लिए है वो। वास्तु वाले कहते हैं कि खिड़कियां बाहर खुलनी चाहिए, दरवाजे अंदर खुलने चाहिए। इसमें क्या है, खिड़की अंदर खुलेगी तो कमरे की जगह रोकेगी और बाहर खुलेगी तो अच्छा है। ये तो सिंपल एक कैसे मैनेजमेंट है, दरवाजा अंदर खुलना चाहिए, दरवाजा बाहर खुलेंगे अच्छा नहीं है। बाहर से आकर के किसी ने नॉक किया, एक तो दरवाजा खोल करके आप उसका स्वागत कर रहे हैं, दरवाजा खोल के वो सामने व्यक्ति सामने खड़ा है, गेट पे नॉक कर रहा है, ये प्रैक्टिकली अच्छा नहीं है। तो यही तो वास्तु है और क्या चीज है। तो ये संयोग जितने भी मिलते हैं ना, ये सारे के सारे संयोग वेदनीय कर्म के उदय से मिलते हैं। उसमें वेदनीय कर्म का उदय निमित्त है, हमारी नहीं चलती, हमारा अधिकार नहीं चल रहा उसके अंदर, हमारा हस्तक्षेप नहीं चलता है उसमें बिल्कुल भी। कितने समय तक के लिए वो पदार्थ रहेगा ये डिपेंड करता है वेदनीय कर्म के ऊपर। अब दो प्रकार के वेदनीय कर्म कहे, एक साता है और एक असाता है। असाता हमारे को पसंद नहीं आती और साता हमारे को पसंद आती है, लेकिन भाई साहब ये दोनों तो जुड़वाए हैं क्या। दरिद्र व्यक्ति, बहुत गरीब व्यक्ति थे, साधु थे कोई, हम राजा दरबार के बाहर आए, कहा राजा जी से मिलना है। तो चौकीदार ने पूछा आप कौन, कि संदेश भेजवा दो राजा जी के पास में कि आपके साधु भाई आए हैं। दरबार ने कहा कि हमने तो ऐसा सुना है कि हमारे महारानी जी तो अकेली हैं, उनकी तो कोई बहन ही नहीं है, आप कहते हो आप राजा जी के साधु हैं, कि आप संदेश तो भिजवाओ उनके पास में। राजा के पास में संदेश भिजवाया गया। राजा जब आए बाहर क्या, तो मंत्री थे, उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने कहा राजा से कि राजा ना
बताया उन्होंने तुरंत जवाब दिया, अरे भाई तुम्हें पता नहीं है वेदनीय कर्म के दो बेटियां थी, एक साता और एक असाता। असाता ने इनको वरण दिया है, असाता ने मुझे वरण दिया है, मेरे साधु भाई। किसी की साता से संबंध, किसी का असाता से संबंध, ये साता और असाता बदल दिया। वही ही रहती है, उदय बदलता रहता है, उदय हमेशा एक समान नहीं है। आप देखेंगे अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव में ये हमेशा चलते रहते हैं। बहुत निर्णय लोग आपको मिलेंगे, अफवाह मिलेंगे, ऐसे लोग जिनकी लाइफ से एंड तक बिल्कुल एक ही ट्रैक पर बिल्कुल चलती है। अदरवाइज कभी लोग समझे आप, यदि मैं छोटी छात्र की भाषा में कहूँ तो कहीं गोल्डन पीरियड है, गोल्डन टाइम है इनका, कितने साल का, ये 8 साल से लेकर के और ये देखो आप ये 16 साल तक कई लोग मिलते हैं तो कहते हैं पंडित जी आपका तो वास्तव में ये जो टाइम पीरियड है ना, ये 12 साल का जो टाइम पीरियड है ये आपका बहुत गोल्डन टाइम है। तो मैं मुझे कहता हूँ बहुत 12 साल का उसके बाद में मतलब तुम मुझे 12 साल की बात कहकर के बहुत प्रसन्न करना चाहते हो, तो पूरी जिंदगी है क्या काम है उसमें, अब कितने गोल्डन टाइम देते हो आप, बाहर से थोड़ा सा वैभव ज्यादा हो गया, थोड़ी संपत्ति ज्यादा हो गई, थोड़ा पैसा ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब गोल्डन टाइम हो गया, लेकिन क्या वो संपत्ति मुझे सुखी करने में समर्थ है। बहुमूल्य जगत का वैभव यह है, क्या हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता, कोई नहीं कर सकता है। माने ये जो कितना भी वैभव इकट्ठा कर लो लेकिन ये सुखी करने में समर्थ नहीं, और हम सब जानते हैं छूटना सही। एक घटना याद आती है एक राजा के, और एक बार एक अजीब तरह की उनके दिमाग में बात आ गई, उनको ऐसा लगा कि मेरे दरबार में सब तरह के लोग मौजूद हैं, मेरे दरबार में सब तरह के निरीक्षर हैं, सब तरह के मंत्री हैं, लेकिन कोई एक पुरुष ऐसी भी होनी चाहिए जो मूर्ख मूर्ख राज की हो। दिमाग में आ रही है होना चाहिए, तो देखकर के और एक व्यक्ति ने मूर्ख का फोन बातें किया करता था, उसको दरबार में बिठा दिया गया और उसके गले में मूर्ख वादी राज का एक पट्टा डाल दिया गया, वहां वो बैठते थे या और बैठते थे वहां वो भी बैठते थे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा, कुछ समय बाद में ऐसा हुआ कि भूल गया लगाना, कोई बात नहीं गिर गया क्या, कोई बात नहीं। कुछ समय बाद में ऐसा हुआ कि राजा बीमार पड़ गया, तबीयत इतनी खराब हो गई, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वैद्य हकीम ने जवाब दे दिया, ऐसा लगने लगा कि अब तो कुछ घंटों के मेहमान हैं। राजा बिस्तरों में लेटे हुए थे, उन्हें नीचे लेटा दिया गया, हर व्यक्ति उनको संबोधन कर रहा है, कुछ न कुछ बात कह रहा है, आप चिंता नहीं करें, आप टेंशन नहीं करें, क्या पीछे से क्या होगा, आप घबराहट नहीं रखें, आप शांति रखें, जो ठीक है कोई बात नहीं। अब ये इस तरह की बातें, सब रानियां खड़ी है और मंत्री वगैरह खड़े हैं, सब कोई ना कोई कुछ ना कुछ बात कह रहा है, वहीं वो मूर्खाधी राज भी खड़ा था, उसको लगा कि सब लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे लगता है कि मेरे को भी कुछ ना कुछ तो बात कहनी ही चाहिए। तो उसने कहा राजा से कि राजन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं जाने की तैयारी में है क्या। अब राजा तो जिंदगी हो गई थी उसको देखते हुए कि ये तो ऐसी बातें करता है, उसको क्या कहे। तो राजा ने कहा हाँ बात तो ऐसी है, जाना है हमारे को। तो महाराज कहाँ जा रहे हैं आप, अरे बहुत लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। कि कब लौट करके आओगे, कि लौट के तो कभी नहीं आएंगे। तो महाराज एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप इतनी लंबी यात्रा पर जा रहे हो तो लेटे क्यों, उठो तैयार हो, मुकुट उकुट लगाओ, थोड़ा तैयारी करो। कि नहीं नहीं वहां जाने के लिए इस तैयारी की कोई जरूरत नहीं है। तो महाराज सेना वेना तो तैयार कर लो, सिपाही उपाई। कि नहीं नहीं वहां सेना वेना साथ में नहीं जाएगी, सेना की जरूरत नहीं है। तो महाराज रानियां वगैरह सब लोग तैयार हो जाएं, कि नहीं बिना रानियों के ही जाना है।
तो महाराज आप जा रहे हैं तो दो चार नौकर चाकर तो साथ में ले लो कि नहीं, वहां उनको भी परमिशन नहीं है। ये हो गया तुम्हारा ये धन वैभव थोड़ा बहुत कुछ बांध दे गए, पैकिंग वैकिंग हो गई आपकी कि नहीं, वहां कुछ भी साथ में नहीं जाता। महाराज आप पहले जाके आए हैं क्या कि नहीं, जाकर के तो नहीं आया। अरे आपको कैसे पता इन सब बातों का कि वहां ये सब नहीं जाता कुछ भी कि नहीं, नहीं मालूम है मेरे को। महाराज कब से मालूम है आपको, आपको कितने बतलाया कि नहीं मालूम है मेरे को ये तो, हाँ तो कुछ भी साथ में नहीं जाता। कब से मालूम है महाराज, बचपन से मालूम है, हम तो जानते हैं तो इसमें क्या है, ये तो हमेशा ही जो भी जाता है वहां वो ऐसे ही जाता है, तो लौट करके नहीं आता है, कुछ भी नहीं लेकर के जाता, कुछ भी नहीं ले जाया जाता, बचपन से जानते हैं। सुन रहा वाह महाराज वाह धन्य है, आज तक तो मैं अपने आप को मूर्खादी राज समझ रहा था, आज मुझे पता लगा कि आपसे बड़ा महामूर्खादी राज कोई और नहीं हो सकता है। यदि वहां कुछ भी साथ में नहीं जाता है तो इतने वर्षों में झमेला इकट्ठा काय को किया था, और गले से पट्टा उतारा और राजा के गले में डाल दिया। तो राजा को तो पता था लेकिन फिर भी उसने ऐसे मूर्खतापूर्ण काम किया, लेकिन शायद हम लोगों को तो पता नहीं है ना। पता है हमारे को, कब से पता है, फिर भी देखो आप पता होते हुए भी उसी में लगे हैं, हम उसी सामग्री को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं जिसमें से एक पाई को ले जाने की व्यवस्था नहीं है, एक शर्ट नहीं जाएगा, एक पेन नहीं जाएगा, एक पीस नहीं जाएगा हमारे पास से, और फिर भी निरंतर उसी उसमें इकट्ठा करने में कैसे मूर्खतापूर्ण काम करते हो। जब पता है तुम्हारे को कोई चीज साथ में नहीं जाएगी तो क्यों जोड़ने जोड़ने में लगे हो, क्यों इकट्ठा करने में लगे हो। और सच बात तो यह है कि तुम्हारे इकट्ठा करने के परिणामों से इकट्ठा होता भी नहीं है। चक्रवर्ती का जितना वैभव होता है ना, जितना साम्राज्य है चक्रवर्ती के पास में, जितनी संपदा है चक्रवर्ती के पास में, वो चक्रवर्ती सम्राट कहीं बिजनेस और फैक्ट्रियां खोल के नहीं बनते हैं। पूर्व में सम्यक दर्शन के साथ में सहज में ऐसा पुण्य बंधता है कि चक्रवर्तित्व पना उनके चरणों में लौटता है। राज घराने राजा महाराजा ऐसी पदवियां ये ज्ञानियों के जीवन में अपने आप बंध जाया करती है। ऐसा कमाने के लिए, लौकिक में काम होने के लिए पुरुषार्थ की जरूरत नहीं होती, पुण्य चाहिए होता है। जिसके पल्ले पुण्य होता है उसका काम अपने आप होता है, और जिसके पल्ले पाप होता है वो लाख प्रयास करने पर भी कार्य में सफल नहीं हो पाता है। खुद है अपना अपना बहुत बलवान है। हम ये कह रहे हैं आपसे कि ये जो हो रहा है वो उदय के हिसाब से हो रहा है, लेकिन जो परिणाम है वो उदय के हिसाब से नहीं है, वो आपके हाथ में है, उसमें आपका पुरुषार्थ चलता है। संयोग मिले हैं वो वेदनीय कर्म के उदय से मिले हैं, लेकिन उन संयोगों के मिलने पर सुखी होना और दुखी होना ये अपने पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। पाप कर्म का उदय आपको दुखी करने में समर्थ नहीं है, पुण्य का उदय आपको सुखी करने में समर्थ नहीं है। पाप कर्म के उदय में हड्डी टूट गई लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप दुखी हो रहे। पाप कर्म के उदय में बच्चे कहना नहीं मानते, असाता वेदनी कर्म का ऐसा उदय है कि जिससे बात करते हैं वही हमारे से मुख मोड़ लेता है। ऐसा पाप कर्म का उदय दिखाई देता है कि धन चला गया, बिजनेस चला गया, जहां हाथ डालते हैं वहां नुकसान हो जाता है, असाता का उदय है कोई बात नहीं। लेकिन ज्ञानी पुरुष उस असाता वेदनीय कर्म के उदय में भी सहज रहते हैं, बिल्कुल सहज रहते हैं। ये पुरुषार्थ का काम है, उदय से विचलित नहीं होना ये पुरुषार्थ का काम है, यहां पुरुषार्थ चलता है। ज्ञानी लोग पुण्य के उदय में रीझते नहीं है, पुण्य का उदय आए तो प्रफुल्लित नहीं होते, मस्त नहीं होते, हंसते नहीं है, ज्यादा मौज मस्ती में नहीं रहते। वो जानते हैं कि ये पुण्य का उदय आ गया है इसलिए ऐसा हो गया है, कुछ काल बाद में पाप कर्म का उदय आएगा तो क्या होगा, पुण्य के बाद में पाप का उदय और पाप के बाद में पुण्य का उदय। ये यौवन जो दिखाई देता है ना, ये बुढ़ापे का पैगाम लिए बैठा है। ज्यादा अभिमान मत करो, ज्यादा दिन नहीं रहेगा, दिन के बाद में रात्रि और रात्रि के बाद में दिवस, ऐसा ही जगत का स्वरूप है। ये सृष्टि का विधान इसी प्रकार का है, दिन के बाद में रात आती ही आती है और रात्रि के बाद में दिन होता ही होता है। उदय कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता। अरे महापुरुषों के जीवन में उदय एक जैसा नहीं रहता तो हम आप कौन है? श्री कृष्ण तो सब जानते हैं, जन्म समय नहीं मंगल जाके, मरण समय नहीं रोवन हारे, तीन खंड के चक्री ऐसे। बोलो, जन्म के समय कोई मंगल गान गाने वाला नहीं, देखो तो सही आप स्थिति। कहाँ हुआ था श्री कृष्ण का जन्म? जेल में। जेल में जन्म हुआ, कोई बधाई देने वाला नहीं, कोई कॉन्ग्रेचुलेशन कहने वाला नहीं, देखो तो सही आप, किसी को कह सकते नहीं। पर एक गरीब से गरीब घर में भी यदि समझिए आप बालक का जन्म हुए तो मैं सही आप पड़ोस के अंदर मिठाइयां बांटे, लेकिन कम से कम घर में ही खुशी तो मनाते हैं। मैं सही सारी दुनिया में उसका ढिंडोरा पीटे, लेकिन आस पड़ोस में सूचना तो देते हैं, लड्डू तो खिलाते हैं। बोलो आप, गरीब से गरीब के का भी जन्म हुए तो मंगल दिखाई देता है, लेकिन उनका जन्म जेल में ऐसे हुआ, पता नहीं लगना चाहिए, सिपाही है मार देंगे। तो कंस बैठा है मारने के लिए, दुश्मन इनका, देखो आप कैसा लग रहा है, और चुपचाप जेल से बाहर। और मरण कहाँ हुआ जी उनका? मरण कहाँ हुआ था पता है आपको? एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया। जरासंध का तीर लगा, शिकार करने के लिए आया था, हिरण का शिकार कर रहा था, और ये पानी पीने के लिए बैठे हुए थे, जंगल से विचरण कर रहे थे, पानी पीने के लिए बैठे हुए थे, प्यास लग रही थी, और बलदेव पानी लेने के लिए गए थे, और बहुत दूर से कुछ हिलता हुआ देखा और हिरण जानकर के पैर पर तीर चला दिया वहीं से, और तीर चलाया और कृष्ण के लग गया तीर। पानी लेकर के आए और पानी पी सके ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी, तड़प तड़प करके मर गए, पानी पीने को नहीं मिला। अंत में जीवन कैसा बीता? तीन खंड के अधिपति थे, एक आर्यखंड और दो मलेच्छ खंड के सम्राट थे। तीन खंड की कल्पना नहीं है आपको, कितना बड़ा साम्राज्य होता है। हमारी जो दुनिया है ना, जैसे हम विश्व कहते हैं, ये पूरी की पूरी दुनिया उस आर्यखंड के कोने में पड़ी है, इतना बड़ा होता है तीन खंड। एक खंड आर्यखंड इतना बड़ा है। तीन खंड के अधिपति सम्राट थे, जन्म कैसा हुआ, मरण कैसा हुआ और जीवन कैसे बिताया, किसका उदय कैसा बदल जाए। इसलिए घमंड करने योग्य नहीं है, अभिमान करने योग्य नहीं है। ये वेदनीय कर्म ऐसा है जो अनुकूलताएं भी दिलाता है और प्रतिकूलताएं भी दिलाता है। अनुकूल संयोग सातावेदनीय कर्म के उदय से मिलते हैं, प्रतिकूल संयोग असातावेदनीय कर्म के उदय से मिलते हैं, ठीक है। दोनों ही आपको संयोग देने का ही काम करते हैं, सातावेदनीय भी और असातावेदनीय भी, कुछ ना कुछ आपको देंगे ही। हाँ बोलिए। देखिए, जो वेदनीय कर्म है ना, ये मुख्य रूप से अनुकूल प्रतिकूल सामग्री दे रहा है। अनुकूल और प्रतिकूल सामग्री जो मिल रही है उसमें मुख्य रूप से वेदनीय कर्म का निमित्त है। ज्ञानावरणीय कर्म में कैसा निमित्त बनेगा कि सिर्फ ज्ञान पर आवरण आवे, ज्ञान नहीं हो सके। ज्ञानावरणीय कर्म का उदय आएगा ना, द्रव्य कर्म है ना ज्ञानावरणीय कर्म, तो उसका उदय कैसा कि मान लीजिए मैं अभी यहाँ बुक पढ़ना चाह रहा हूँ और ज्ञानावरणीय कर्म का एकदम ऐसा झटके से उदय आया कि लाइट चले गई, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। लेकिन जो संयोग और परिस्थितियां मिली है, बंगला कैसा है, गाड़ी कैसी है, कपड़े कैसे हैं, धन कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, इन सब में ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आदि कर्मों का काम नहीं है, इनमें वेदनीय कर्म का काम है। ये द्रव्य कर्म ही तो है सभी, आप ये तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा आपको, ये सब है ना, ये सब द्रव्य कर्म के ही भेद है। तो बाद में समझ में आया कि आप शायद द्रव्य कर्म में और इसमें भेद नहीं कर पाए। द्रव्य कर्म के 8 भेद हैं, शायद मैं ये वाक्य के बीच में लिंक नहीं कर पाया था। मैंने 9 कर्म संयोग, जिसका कोई भेद नहीं है, भाव कर्म राग द्वेष आदि, उनकी कोई निश्चित संख्या और भेद नहीं बतलाए गए, लेकिन द्रव्य कर्मों के 8 भेद शास्त्रों में मिलते हैं, जिनको अपन अष्ट कर्म कहते हैं। ये सब अष्ट कर्म द्रव्य कर्म के ही भेद हैं। तो उनमें ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय और वेदनीय, वेदनीय की अपनी चर्चा चल रही है। कैसा मिलेगा, कपड़े कैसे होंगे, देखो कोशिश तो यही करते हैं हम कि ऐसे हो कि लोग देखें। वो ऐसे भी होते हैं कई बार कि जिनको लोग देखते ही रहते हैं कि ये क्या पहनाया है क्या माने वो जो है ना वेदनीय कर्म से मिला है, इनको साता था कि अफाता था, आपको उसमें वेदन कैसा हो रहा है, आप उसमें कैसा फील कर रहे हैं। जैसे असाता वेदनीय कर्म के उदय से प्रतिकूल संयोग मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, हमारे को जो जो वस्तुएं अनिष्ट लग रही है, जैसे मौसम हमारे को अच्छा नहीं लग रहा, किसके कर्म के उदय से हुआ था, अभी सबका अलग अलग कर्म। अब मौसम तो एक जैसा है, जितना भी डिग्री टेम्परेचर है, मान लीजिए अभी एसी चल रहा है इस हॉल में, तो अभी एसी चलते हुए किसी व्यक्ति को यहाँ ठंड लग रही है, किसी व्यक्ति को नहीं लग रही है, किसी को कम लग रही है, किसी को बहुत अच्छा फील हो रहा है, सबका अलग अलग है ना अपना अपना। तो अब हम ये कह रहे हैं कि ये परिस्थितियां तो जो मिली है वो परिस्थितियां तो सबके लिए समान है, किंतु उन परिस्थितियों में उदय सबका अलग अलग है। समझ में आ रही है बात, हॉल और टेम्परेचर ये सबके लिए एक समान है। यहाँ मान लीजिए जितने लोग बैठे हैं, बहुत अच्छी संख्या है, जैसा मैं सुनता था यहाँ पर लोगों से, उसकी तुलना में देखें तो कई दिनों से बहुत अच्छी संख्या है यहाँ। तो कल तो कोई 100-125 लोगों ने सुना करीब कल, क्योंकि कॉन्फ्रेंस पे भी सुन रहे थे बहुत सारे लोग, मोना में लाइव चल रहा था ऐसा। तो मेरा कहने का मतलब ये इतने लोग बैठे हैं तो संयोग सबके लिए एक जैसे है कि नहीं, संयोग एक जैसे हैं, लेकिन उदय क्योंकि सबकी फीलिंग अलग अलग है, हर व्यक्ति अलग अलग तरह का महसूस कर रहा है। कोई व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि कब खत्म होगा यार, एक रोज अभी कल तक और अभी कल कल तो और झेलना पड़ेगा इनको। कोई व्यक्ति ऐसा फील कर सकता है, अब क्या करें, महेंद्र भाई ने इतना कहा है तो अब आना ही पड़ा है अपने को, कोई ऐसा फील करता है, कोई ऐसा फील कर रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, किसी को कैसा महसूस हो रहा है, किसी को तकलीफ हो रही है, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को दर्द हो रहा है, नहीं कोई बहुत, किसी को ज्ञान की ज्ञान, मतलब सबके परिणाम भी अलग अलग, उदय अलग अलग और फीलिंग अलग अलग। तो जिसकी जैसी फीलिंग उसके वैसा वेदनीय कर्म। जैसे समझिए जिसको वो अनुकूल लग रहा है एसी, उसके लिए साता वेदनीय कर्म का उदय, और जिसको ठंड लग रही है उसके असाता वेदनीय कर्म के उदय से मिला है। इसका मतलब एक और देखो, बहुत एक मार्मिक बात निकली यहां, संयोग साता और असाता वेदनीय कर्म के उदय से नहीं मिला, अपितु जो मिला था उसमें अनुकूलता लगी तो साता हो गया, और उसी में जब प्रतिकूलता लगी तो असाता हो गया। बात सही समझ में आई क्या? हम माइंड भी क्या कहें अपन, उदय जैसा होगा ना वैसा फील होगा आपको। आप अपनी देखो, वो सोच तो सुख दुख के लिए, वो एक स्टेप आगे वाली बात है, अपन करेंगे अभी उसके बारे में भी बात। मैं सिर्फ इतनी बात समझ ली, जैसे आपसे पूछा हमने कि स्त्री पुत्र आदि बाह्य संयोगों का मिलना पुण्य के उदय से होता है या पाप के उदय से होता है, साता वेदनी के उदय से होता है या असाता वेदनी के उदय से होता है, दोनों के उदय से। आपको जो मिले हैं वो पुण्य के उदय से मिले हैं या पाप के उदय से, आपकी फीलिंग है। इसलिए दैट्स राइट, अकॉर्डिंग टू द फीलिंग वो चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में कहें कि ये व्यक्ति हमारे को पुण्य के उदय से मिला है, ऐसा नहीं है कि ये पत्नी हमारे पुण्य के उदय से मिली है, कि नहीं जब हमारे को चांडाली नहीं दिखती है समझो आप, जो भी लगे ऐसा तो समझिए वो पाप कर्म का उदय है। और जब हमारे को सरस्वती दिखे तो समझिए पुण्य का उदय है। फीलिंग बदलती रहती है, जब हमारे को बच्चा लगे कि नालायक है तो समझना आपके पाप का उदय, और जब लगे कि ये तो बहुत अच्छे आज्ञाकारी है तो साता का उदय।
कभी कभी ऐसा भी विचार आता है द्रव्य और सब में अलग अलग है, बट हाँ ओरिजिन बिकॉज सब में एक्सेप्ट है द्रव्य एवरीबडी से डिफरेंट फीलिंग डिफरेंट थिंग एंड द्रव्य के इन स्वभाव के तीन गुण रहते हैं, पर तीन गुण कहाँ से आए वो समझ नहीं।
नहीं देखो अपन तो यहाँ जो कर्म फिलॉसफी की बात कर रहे हैं ना, हमने ही बांधे हैं और हम ही भोग रहे हैं, हमारे ही परिणाम हैं। मतलब जो कुछ भी है ना ये सब अपने ही हाथ में है, किसी और का नहीं है। बस ये स्वार्थपना, सच्चा स्वार्थपना अपने समझ में आ जाए कि किसी का हस्तक्षेप नहीं है। भाई कौन किसको बिगाड़ सकता है? आपके ऊपर यदि प्रतिकूलता आई है, मान लीजिए आपको बच्चे सामने जवाब देने लग गए, अब आप क्या करेंगे बतलाओ? कई लोग तो ऐसे तक होते हैं, मैं आपको बताऊं, मानसिक वेदना इतनी हो जाती है, इतनी टेंशन हो जाती है, किसी ने सामने जवाब दिया और हम बर्दाश्त नहीं कर सके, व्यक्ति आत्महत्या करके मर जाता है। आत्महत्या करके भी सुखी होना चाहता है, कचाइयों की वेदना सही नहीं जाती, बर्दाश्त नहीं होती, तो क्या किया, जहर खाकर के मर गया। अरे भैया ये मनुष्य जन्म सुखी होने का उपाय आत्म साधना है, आत्महत्या नहीं, आत्म आराधना है। यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो आत्महत्या से कुछ नहीं होगा, परिणाम बदलो, चिंतन बदलो। परिस्थिति को नहीं बदल सकते क्योंकि परिस्थिति कर्म के उदय के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन मनस्थिति आपके हाथ में है, तो परिस्थिति नहीं मनस्थिति को बदलो। संयोग को नहीं बदल सकते आप, अपना चिंतन बदल सकते हो, अपनी सोच बदल सकते हो, अपने बिगड़ते हुए परिणामों का ख्याल रख सकते हो। वही तो पुरुषार्थ है और क्या है, सबका ख्याल रखते हैं हम। आपको पता नहीं है आप कितना ख्याल रखते हैं, रेड लाइट क्रॉस ना हो जाए, सिग्नल क्रॉस ना हो जाए, आपको ध्यान है, आपको इस बात का ख्याल है, आप इसमें सावधान हैं, शर्ट की क्रीज का ध्यान रखते हैं, बालों की स्टाइल का ध्यान रखते हैं, चेहरे पर झुर्रियां न पड़ जाए, इस बात का आपको ख्याल है, क्यों मोबाइल कहीं छूट न जाए, इस बात का ख्याल है, कांच की बर्नी गिर न जाए, इस बात का ख्याल है। छोटी छोटी सी बातों का ख्याल रखते हैं हम, कितने सावधान रहते हैं, कितने सावधान रहने का प्रयास करते हैं हम, लेकिन भैया परिणाम न बिगड़े इस बात का भी ख्याल है, सब बातों का ख्याल रखता है, ध्यान रखता है, सावधान रहता है, दूध न उफन जाए, सब्जी न जल जाए, रोटी न जल जाए, आग न लग जाए, गरम गरम न लग जाए, चप्पल न टूट जाए, ये चीज कहीं छूट न जाए, बटन न टूट जाए, ये चीज खराब न हो जाए, करंट न आ जाए, कितना ख्याल रखता है, कितना सावधान रहता है, लेकिन परिणाम न बिगड़ जाए, भाव न बिगड़ जाए, बोलो ये भी ख्याल रखते हैं थोड़ा सा, इतना सा यदि ख्याल ये भी रख ले तो समझ लीजिए जीवन सुधर जाए। कहाँ बहुत आगे जाना पड़ता है, आप बहुत आगे आ गए हैं, आपको पता नहीं है आप कितना आगे हैं, भले बैठे बहुत पीछे हो आप लेकिन फिर भी स्वतंत्र हैं भाई, परिणाम तो अपने हाथ में है ना, एक ही तो चीज है जो अपने हाथ में है, परिणामों के अलावा और है क्या हमारे हाथ में? मतलब शरीर पे चलती नहीं है, बिजनेस पे चलती नहीं है, बच्चों पे चलती नहीं है, लाइफ पे चलती नहीं है, परिवार हमारे हिसाब से चलता नहीं है, घुटने यदि दर्द करते हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते, कमर दर्द हो रही है तो हम उसमें संभाल नहीं सकते, बुद्धिपूर्वक क्या कर सकते हो आप कि बस पाप कर्म के उदय में अपने परिणामों को संभाल सकते हो। और आप यदि अपने परिणामों को संभालेंगे तो आप निश्चित मान करके चलिए, वर्तमान परिणामों का संभालना माने फ्यूचर अच्छा होना, अच्छा भविष्य हो रहा है। जिस व्यक्ति की सोच अच्छी है, जिस व्यक्ति का चिंतन अच्छा है, जिस व्यक्ति का अच्छे विचार जिसके चलते हैं, समझ लीजिए वो अच्छा है, वो उसका भविष्य। इसीलिए आपको ध्यान होगा कल हमने एक वाक्य कहा था कि वो भली होनहार है जिसकी जिसे ऐसा विचार आता है। ज्ञानी लोग ये देख करके तुरंत कह देते हैं आप बहुत भाग्यशाली हैं, मंदिर आया है ना बहुत भाग्यशाली है। कैसे कह दिया आपने भाग्यशाली है, क्योंकि मंदिर आने का परिणाम हर किसी का नहीं होता। सदभाग्य जागृत हो गए तो मंदिर आने का परिणाम आता है। ये जिनवाणी की बात जो कान में पड़ रही है ना, ये बहुत नसीब वालों की मिलती है, ये सुनने को नहीं मिलती है। ये फ्री में मिल रही है ना, सच में इसलिए भी कीमत नहीं लगती है हमारे को। अभी इसके लिए चार्ज लगे ना तो बहुत अलर्ट होकर के बैठे हम। पिक्चर की टिकट यदि लगता है ना तो टाइम से पहुंचता है भाई साहब, क्या मजाल जो 5 मिनट लेट हो जाए, 5 मिनट की छूट जाए, पैसा पूरा दिया है। बोलो कितना सोचते हैं हम। मुझे आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो मूवी देखने के लिए गया और अकेला गया हो, जो मेला देखने गया हो, जुलूस देखने गया हो, जो अकेला गया हो, साथ में जाता है, प्लान करता है, लोगों को इकट्ठा करता है, फैमिली वालों को ले जाता है, फ्रेंड्स को साथ में लेकर के जाता है, उनसे फोन पे टाइम मिलाता है, निश्चित करता है घूमने जाने, देखो कैसा विचार बनाता है सबको साथ में लेकर के। हाँ लेकिन एक जगह ऐसी दिखती है जहाँ अकेले उठ के आ जाते हैं, कहाँ? यहाँ। बात करेंगे तो लोग ये जरूर कहते हैं अरे हाँ मजा आ गया, कि मजा आ गया तो अकेले काहे को आ गए। हम नहीं बता सकते दूसरे व्यक्ति को, यदि हमें अच्छा लगता है तो हम साथ में लेके नहीं चल सकते। परिणामों की चर्चा चल रही है यहाँ, तो वेदनीय कर्म बंधता कहते हैं, आगे स्टेप पे बात करते हैं अपन। वेदनीय कर्म बंधता कहते हैं, साता वेदनीय कैसे बनता है, असाता वेदनीय कर्म कैसे बनता है, इन दोनों के कारण की चर्चा की उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार सूत्र महाशास्त्र में। सबसे पढ़ा होगा बहुत लोगों ने तत्वार सूत्र, नहीं पढ़ा हो तो खोल करके देखें, पढ़ करके देखें, उसमें चर्चा की है उन्होंने छठवें अध्याय में। असाता वेदनीकरण के आश्रम के कारण बतलाए, दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य असद वेद्यस्य, पूरा सूत्र दे दिया। असाता वेदनीकरण के आश्रम के क्या कारण हैं, क्या कहा, दुख शोक तापाक्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य असद वेद्यस्य, असाता वेदनीकरण के कारण है। एक एक शब्द बतलाया गया, दुख, दुखी करना और दुखी होना, असाता वेदनीकरण बांध रहे। इसलिए सावधान रहें, हमारे निमित्त से कोई दुखी ना हो, हमारी क्रिया से, हमारे भाव से, हमारे व्यवहार से, हमारी भाषा से, हमारे वचनों से कोई व्यक्ति के दिल को ठेस ना पहुंचे। दूसरे व्यक्ति को यदि आप दुख दे रहे हैं तो असाता वेदनी कर्म बन रहा है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ जो ध्यान रखने योग्य है वो ये है कि दूसरों को दुख देने से तो असाता बनता ही है, स्वयं दुखी होने से भी असाता कर्म बनता है। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहो। पाप कर्म के उदय में यदि आप दुखी रहेंगे, आप वर्तमान में तो पूर्व के असाता का उदय है। देखना न्यारी न्यारी चीजें दोनों, प्रतिकूल परिस्थितियां मिली है ये असाता का उदय है, और इसमें वर्तमान में दुखी हो रहा है ये असाता बांध रहा है। ख्याल में दोनों चीजों में करने के बराबर ना। हाँ बांध रहा है मीन्स बंध रहे हैं, ऐसा समझिए बांध रहा है, में अपने को ऐसे लगता है कि हम बुद्धिपूर्वक बांध रहे हैं। बट वो अपने चिंतन से ही बंध रहा है ना। हम बांध रहे हैं का मतलब हम सोच समझ करके तो नहीं बांध रहे हैं, हम विकल्प तो नहीं कर रहे। दुनिया में कौन चाहेगा? अब बोलो, यदि दुनिया में हम किसी के ग्राहकों की चर्चा करें, क्या पुण्य और पाप में एक बार ऐसा झगड़ा हो गया, पुण्य ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ, पाप ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ, तो पुण्य ने कहा वोटिंग करा करके देख लो सारी दुनिया मुझे चाहती है। अब पाप के तो घुटने हिलने लग गए, वो तो ढूंढने लग गया। एकदम उसके दिमाग में आया, उसने कहा अरे धोखे में मत रहना, दुनिया तुम्हारे को चाहती है लेकिन सारी दुनिया मेरे में अपना काल बिताती है। इसमें क्या है? अब चाहते सब पुण्य को है क्या, लेकिन काम सब पाप के करते। हम पुण्य को चाह रहे हैं, हम पुण्य को चाह रहे हैं, पुण्य सबको अच्छा लगता है। अरे पुण्य अच्छा लगता है तो करते क्या हो, ये बताओ ना। अच्छा तो लगता है लेकिन टाइम हमारा कहाँ ज्यादा बीतता है, पाप करने बीतता है। तो किसी व्यक्ति से पूछो तो पुण्य ने कहा, पुण्य ने सोचा अरे भाई मेरी दुकानदारी तो बहुत चलेगी, मेरे ग्राहक तो बहुत है। जितने पूछते हैं हर व्यक्ति कहता है पुण्य चाहिए पुण्य चाहिए, पुण्य के ग्राहक तो बहुत सारे हैं तो अपना बिजनेस तो बहुत चलना चाहिए। और पाप के खरीदारों के लिए पूछते हैं कि पाप किसको चाहिए पाप किसको चाहिए, तो कोई कहता हमें नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए, लेकिन दुकानदारी किसकी ज्यादा चलती है? पाप का बिजनेस ज्यादा चलता है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता था पुण्य और करता था पाप। तो पाप ने कहा कि बहुत अच्छा है, पुण्य चाहते रहो और मेरे को करते रहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। नाम किसी का भी लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि हाथ खड़े किसी के लिए भी करो, लेकिन वोट तो मुझे ही डालने हैं। हाथ खड़े सब करेंगे पुण्य के लिए और वोट डलेगा पाप के लिए, फिर क्या होगा? कि रिजल्ट आएगा कि क्या हुआ भाव, कि चलो नरक में बुलावा आया है, आ गया उदय, निगोद में पहुंच गए उदय आ गया, फिर पाप कर्म का उदय आ जाता है। फिर दो चीजें हैं यहाँ, एक बंधन और एक उदय, दोनों को बिल्कुल सेपरेट समझना। जो उदय आया था वो बिल्कुल स्वतंत्र था, वो पूर्व का उदय था, वो पास्ट में जो किया था उसके फल में हमारे को ये सब मिला था, लेकिन इसके मिलने पर अब नया हमारा पुरुषार्थ, अब हम पुरुषार्थ भी कर सकते हैं और अपराध भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स। अब हमने उसमें किया अपराध, माने हम उस पाप कर्म के उदय में हुए दुखी पीड़ित हुए खेत खिन्न हुए, तो क्या होगा कि नए आगे के लिए असाता वेदनीय कर्म के लिए बीज बो दिए। नई बात, अब पाप कर्म का उदय आया और हम नहीं हुए दुखी, तो क्या करने का पाप कर्म का उदय? पाप कर्म का उदय किसी को जबरन दुखी नहीं करता, इतना जरूर कर सकता है कि सही हो परिस्थिति क्रिएट हो गई, दुखी तो नहीं कर सकता। क्योंकि यदि पाप कर्म का उदय इस जीव को दुखी करने में समर्थ होता तो उपसर्ग के काल में मुनिराज बहुत दुखी होते, भोजन नहीं मिल रहा है, उपसर्ग हो रहा है, पैर में कांटे चुभ गए हैं, नंगे पांव जमीन पर चल रहे हैं, उपसर्ग क्या? हाँ, उपसर्ग मीन्स कोई न कोई संकट का प्रसंग, कोई न कोई मुनिराज के ऊपर उपद्रव, मुनिराज के ऊपर पत्थर बरसा, जैसे हम बोलते हैं पार्श्वनाथ के ऊपर कमठ ने उपसर्ग किया, इट मीन्स पार्श्वनाथ के ऊपर कमठ ने पत्थर बरसाए, गज कुमार के सर के ऊपर वो सिगड़ी जला दी गई, बोलो आप सर पे सिगड़ी जला दी, सिगड़ी जलती हुई सिगड़ी नहीं रखी, फर्क है दोनों में क्या रमेश भाई? सिगड़ी जला करके सर पे रखी हो ऐसा नहीं है, वो सर के ऊपर मिट्टी से पाल बांधा क्या, सर के ऊपर ही, और वही बीच में लकड़ियां रख करके जलाई खोपड़ी पर, सर नहीं बचा। कौन से कर्म का उदय है? कौन से असाता वेदनी कर्म? प्रसंग तो दुख का है ना, लेकिन दुखी नहीं है, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया मोक्ष चले गए, सुकौशल मुनिराज बाघ ने खाया उनको, सुकुमाल मुनिराज 3 दिन तक श्यालनी खाती रही। कितने सुकोमल थे मालूम है आपको सुकुमाल, सूर्य की रोशनी नहीं देखी थी उन्होंने जन्म से कभी, रत्नों के प्रकाश में पले बड़े हुए थे, जमीन पे पैर नहीं रखा था उन्होंने अपनी लाइफ में कभी, जब तक युवा हुए तब तक। राजकुमार थे, पिता ने दीक्षा ले ली उनके जन्म होते ही, और जब इनका जन्म हुआ तो इनका भविष्य इनकी माँ ने किसी से पूछा, तो किसी महात्मा ने ये कहा था कि जब ये किसी मुनिराज के वचन सुन लेगा या कभी दर्शन कर लेगा समागम इसे होगा तो ये संन्यास ले लेगा, पिता की राह पे चला जाएगा। तो उसने कभी किसी मुनिराज को नगर के आसपास नहीं आने दिया, कभी कोई आते थे तो अपने बेटे को घर से बाहर नहीं निकलने दिया, चावल खाते थे पके हुए तो वो मुख में कटकते थे, फूलों की सैया पर सोते थे तो वो सैया भी उनको चुभती थी। बन गया एक बार ऐसा प्रसंग, सूर्य की रोशनी जिनको बर्दाश्त नहीं होती थी, प्रसंग ऐसा बन गया कि कोई आ गए मुनिराज वहां, जो उनके पिता थे तो वो वहां आ गए और वो उनका उपदेश होता था और इन्होंने सुना और दरवाजा खोल लिया, उन्होंने ऊपर खिड़की खोल के देख लिया और पीछे से रस्सी लगा करके साड़ियां कपड़े बांध करके और उतर गए, हाथ छिल गए सारे, जमीन पे पैर रखा उन्होंने लाइफ में पहली बार, जमीन पे पैर रखा तो पैर छप गए, पैर छप जाते थे, खून के पांव ऐसे छपते हुए आगे चले गए, जंगल में चले गए, उस खून को चाटती हुई पूर्व भाव की बैरी, पूर्व भाव में जिसने बैर बांधा था उनकी भाभी श्यालनी बन गई थी जो, वो आ गई और उसको ब्लड को चाटती हुई जहाँ तपस्या कर रहे थे ना, 3 दिन तक उसने बच्चों सहित इनको खाती रही और ध्यान से विचलित नहीं हुए। पाप कर्म का उदय तो तीव्र था, बहुत तीव्र पाप कर्म का उदय था, लेकिन उपयोग पाप कर्म के उदय की तरफ नहीं था। पाप कर्म का उदय बाहर में आ रहा है और उपयोग अंदर में जा रहा है, उदय अंदर में नहीं आता, उदय बाहर में आता है और पुरुषार्थ अंदर में चलता है। जो बाहर के उदय की तरफ ध्यान नहीं दे करके अंदर का पुरुषार्थ करते हैं, ऊर्ध्वगमन हो जाता है उनका, चले गए। सुकुमाल मुनिराज सर्वार्थ सिद्धि में है इस समय। यशोधर मुनिराज गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, पाप कर्म का उदय, असाता वेदनी कर्म का उदय है, मतलब 3 दिन तक गले में सर्प पड़ा रहा, श्रेणिक महाराज ने डाला था, लाखों चींटियों ने शरीर को छलनी कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, ध्यान से विचलित नहीं हुए। पार्श्वनाथ की तो बात है ही, कितने दिनों तक उपसर्ग होता रहा उनके ऊपर। पांडव मुनिराज युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव 3 पांडव शत्रुंजय से मोक्ष गए, युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव सर्वार्थ सिद्धि में गए, कैसा उपसर्ग किया उनके ऊपर, गरम गरम लोहे के वैसे बिल्कुल आग जैसे लाल करके आभूषण पहना दिए गए उनको, गले में मालाएं डाल दी, हाथ में कुंडल पहना दिए, यहाँ बाजू बंद लगा दिए, ऐसे उबलते हुए लोहे के लाल सुरख, जल गया सारा शरीर, उपयोग बाहर नहीं, उदय पाप का चल रहा है बाहर में। ज्ञानियों के ज्यों ज्यों बाहर में पाप कर्म का उदय चलता है, त्यों त्यों अपने उपयोग को वहां से हटाकर अंदर में ले जाते हैं, देखते नहीं है, परवाह नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं उसको। हाँ, यदि वे दुखी होते तो नया असाता कर्म बनता, तो असाता वेदनीय कर्म क्या काम कर रहा है, बांधते कैसे हैं, दुखी होकर के, शोक दूसरा शब्द दिया, शोक संतप्त होकर के, मरण हो गया किसी का, दुखी हो गए, शोक संतप्त हो रहे, अरे भाई मरना तो है ही, आप अपना चिंतन बदलिए, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, रोने से क्या होगा, अब रो करके उनको वापस जिंदा तो नहीं किया जा सकता है, आपके दुखी होने से क्या होगा, मतलब रोने और दुखी होने से नवीन कर्म का बंधन ही है, अलग अलग थोड़ा थोड़ा सा इनमें भेद किया है। पीड़ा रूप परिणामों को दुख कहते हैं, शोक किसे कहते हैं, उपकारी का वियोग हो जाने पर जो मन की स्थिति होती है उसे शोक कहते हैं, वे हमारे उपकारी थे, जो हमारे सहयोगी थे उनका वियोग हो गया तो उसे कहते हैं शोक। फिर कहा ताप, संसार में अपनी निंदा आदि हो जाने से तीव्र जो पश्चाताप हुआ उसे कहते हैं ताप। फिर आक्रंदन, आक्रंदन किसका नाम, रोना, आंसू बहना, आक्रंदन। नहीं ऐसा तो नहीं है,
जब दुखी हो गया ऐसा एकदम तीव्र हो जाता है एकदम से उसके ध्यान अपने अंदर जाता है।
नहीं, थोड़ा सा बदल सकते हैं इस बात को। हाँ, दुखी होकर के नहीं, लेकिन जिसको संसार के दुख दुख रूप लगते हो। नहीं नहीं, बहुत फर्क है। जिसको संसार दुख रूप लगता है, जिसको संसार असार लगता है, जिसको जगत रहने लायक नहीं लगता है, वो जगत से छूटने के लिए अपने स्वभाव में आता है, उसे सम्यक दर्शन होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुखी का अर्थ रोना नहीं, माने उसको ये फीलिंग हो गई कि ये संसार मेरे रहने लायक नहीं है। कोई भी जो भी हो, तो ज्ञानियों की बात करते हैं हम तो, है ना, ज्यादा समय नहीं है अपने पास में। आक्रंदन हो गया, वध, किसी की आयु आदि प्राणों का घात किया यदि हमने, उससे भी असाथा वेदनी कर्म का बंधन हो रहा है। परिवेदन, अत्यंत दुखी होकर के करुणा जनक जो रुदन किया गया वो परिवेदन है। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो वेदनीय कर्म बंधन के कारण कहे, असाथा वेदनीय कर्म बंधन के कारण कहे, उसमें दुखी, खेत खिन्न, ताप, शोक संतप्त, पीड़ित, मन में संताप, रोना, ये सब असाथा कर्म बांधने वाले कारण है। कितना अच्छी बात कह रहे हैं, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है इन कारणों को पढ़ करके अपनी लाइफ कितनी अच्छी हो जाती है, शांति मिलती है। हमने दुखी होना छोड़ दिया क्या, तो देवरानी ने कुछ कह दिया, जिठानी ने कुछ कह दिया, भाई साहब कुछ कह गए, बच्चों ने कुछ कह दिया, वो सुनते नहीं है, सास ने कुछ कह दिया, बहू कुछ कहने लग गई है, बेटे सामने जवाब दे रही है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था आज वो कैसा मेरे को बोल करके चला गया। अरे यार, तेरे असाथा कर्म का उदय, नया असाथा मत बांध। अरे कितना गजब बात कहते हैं यहाँ, आप मत दुखी हो। यदि आप इस चीज को वापस रिपीट नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में तो ऐसा मत करो।
वो तो कभी हो सकता है ना,
वही वो ये जो हम कह रहे हैं, ये स्वाध्याय के बल पर होगा, ये अभ्यास के बल पर होगा, ये प्रतिदिन अभ्यास करने से होगा। ये ऐसा नहीं कि साल में एक बार हमने सुन लिया और बस गंगा जी नहाए। साल में एक बार रोटी खाओ ना आप, क्या नहीं, शरीर की खुराक तो रोजाना चाहिए, तो आत्मा की खुराक भी रोजाना चाहिए। क्या भोजन यदि शरीर की खुराक है तो चिंतन, मनन, स्वाध्याय, सत्संग, ये आत्मा की खुराक है। आप कीजिए सत्संग, आपको मौका मिल रहा है, सच में आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपके यहाँ सत्संग चलता है। लोगों को सुनने को नहीं मिलता, तरसते हैं लोग, जिसको नहीं मिलता ना वो तरसते हैं, और हमें सहज यहाँ योग मिलता है, चलाते हैं महेंद्र भाई, सप्ताह में 3 दिन चलता है, 4 दिन चलता है, सीढ़ी चलती है, कॉन्फ्रेंस पर चलते हैं, आप लाभ लीजिए। व्यक्तिगत हित की बात कह रहा हूँ, किसी और के लिए थोड़ी ना, आप करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरे को क्या मिलेगा बताओ, मेरे को कुछ तो मिलेगा। अच्छा आप लोग कुछ करेंगे, थोड़ा बहुत पुण्य तो मुझे भी लगेगा ना, नहीं लगेगा भाई साहब, नहीं लगेगा। क्या कई लोग मिलते हैं वो ये कहते हैं यार आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कमीशन तो आपको भी, क्या यार कौन समझाए इनको, ये कर्मों में ये चलता ही नहीं है बिल्कुल भी, कोई कमीशन का काम नहीं है। तो अपना जो परिणाम हो रहे हैं ना, मेरे समझाने के, मेरे सिखाने के, बताने के, ये जो मेरे परिणाम है, इन कर्मों का बंधन मुझे होगा, इसका फल मुझे मिलेगा भविष्य में। आप जो परिणाम करेंगे, आप जो सोचेंगे, आप जो पढ़ेंगे, उसका फल आपको मिलेगा। इतना सा है। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? आपके परिणाम ही आपके अच्छे के निमित्त बनेंगे। आपको जरूरत नहीं है मुझे इंडिया से यहाँ बुलाने की। हाँ तो वही तो, अब समझ लिया ना। मैं ऐसा मत करना उस राजा की जैसे कि मुझे तो पता है बचपन से। पंडित जी कोई नई बात बताओ, ये तो सब हमको पता है, ये तो सब हम जानते हैं। वो पता है, वो एक महिला थी और वो उसको कुछ बनाना था और वो किसी से सीखने के लिए किसी के घर पर गई और जब वो सिखा रही थी कि ये कैसे बनता है तो उसने कहा देखो ये बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कढ़ाई लेते हैं। कि हाँ वो तो मेरे को पता है, लेकिन सिर्फ कढ़ाई को है ना गैस पे चढ़ाओ क्या, हाँ ये भी मेरे को आता है। फिर आप क्या करेंगे कि आप ये यहाँ से लेकर के आप ये तेल लो, फिर इस तेल को इस बर्तन के अंदर लगाएं, आप डाल ले इतना इतने मात्रा में डालना, कि हाँ ये भी मेरे को आता है। ये मेरे से सीखने के लिए आई है, ये बोलती है मेरे को आता है आता है। फिर आप इसको नीचे से गैस जलाना और फिर ये तेल धीरे धीरे उबलने लगेगा, कि हाँ ये तो मेरे को आता है। तो बुरा लगा उसको थोड़ा सा, तो उसने कहा जब ये तेल उबलने लगे तो इसमें पानी डाल देना, कि हाँ ये तो मेरे को आता है। ठीक है, जब हो गया तो हम तेरे को कुछ सिखा रहे हैं, उसका प्रोसेस सिखा रहे हैं, कहते तो हमारे को पता है सब, ये सब पता है, लेकिन उसका भाव भाषण है या नहीं है, उसकी श्रद्धा है या नहीं है हमारे को, वो हमारे अंदर से वो बात जचती है या नहीं, वो हृदय में उतरी है या नहीं। वो बात बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन इस कर्म फिलॉसफी के आधार पर अपने जीवन को बदलना कठिन है। किसी ने प्रश्न किया ऐसा, देखो ये बहुत सरल है, ये बहुत सरल है, ऐसा कोई वाक्य पढ़ा था मैंने, कोई बहुत वाक्य मैं उसको भूल रहा हूँ थोड़ा सा, ज्ञानावरणी कर्म का ऐसा उदय है। लेकिन ऐसा लिखा था कि ये कठिन है, ये कठिन है, तो फिर सरल के मतलब नहीं, कठिन क्या है, ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है। फिर कहा कठिन क्या है कि सरल होना कठिन है, ऐसा वाक्य था। मैंने हर चीज आसान है, परोपकार करना आसान है, सहयोग करना आसान है, तो फिर कठिन क्या है? तो कहा कि सरल होना कठिन है। हम सरल हों, हमारा जीवन सरल हो जाए, हमारा जीवन सहज हो जाए, हम परिस्थितियों से प्रभावित न रहें, वो बहुत कठिन काम है। परिस्थितियां हमारे को प्रभावित करती है, थोड़ी सी परिस्थिति बदली और हम लौटते, थोड़ा सा बदला घबरा जाते हैं। अरे मत घबराओ, मत बदलो, उसके कारण आप सहज रहो, आप नॉर्मल रहो, उदय अपने आप बदल जाएगा। आप नहीं बदलोगे तो उदय बदल जाएगा। आप कर्म का उदय आए हैं ना, अब आप उसके आधार पे बदल गए, आप घबरा रहे हैं, आप हड़बड़ा रहे हैं, उससे क्या होगा? नया आता, आप सहज रहे तो कोई बात नहीं, आया है उदय चला जाएगा, ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा। आप नहीं बदले, आप कायम रहें, आप अडिग रहें, आप स्थिर रहें। तो असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण देखिए अपन ने, इसी तरह से साता वेदनी कर्म के आश्रव भी बतलाए उन्होंने, आश्रव के कारण साता वेदनी कर्म कैसे बंधता है। भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योग है शांति शौच मिति सद्वेदस्य, ये सूत्र दिया। और सूत्र का अर्थ आप देख लीजिए बहुत सरल है, कुल मिलाकर के सब अच्छी बातें हैं। जो जो आकाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण से उनसे बचे, साता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण होंगे। फिर भी इसमें इन्होंने कहा है कि संसार के जो प्राणी हैं, जो व्रती हैं, अनुव्रती हैं, संयमी हैं, उनके ऊपर दया और अनुकंपा का भाव, दान देने का भाव, परोपकार की भावना, दूसरों का सहयोग करने की भावना, ठीक है, संयमा संयम, स्वयं पंचेंद्रिय विषय भोगों से विरक्ति का परिणाम, छह काय के जीवों की हिंसा से बचना, संयम, सावधान रहना, श्राद्ध संयम, योगों की चंचलता को रोकना या योगों के विसंवाद को रोकना, मनोयोग पूर्वक अच्छी तरह धारण करना योग कहलाता है, कषायों का अभाव, शांति, लोभ का त्याग, ये सब कारण साता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण बतलाए गए। इन सबसे साता वेदनी कर्म बनता है। अब देखिए, दुनिया में हर व्यक्ति चाहता था कि पुण्य का उदय आए, क्योंकि काम पुण्य के उदय से होता है। हर व्यक्ति ये सोचता है पुण्य का उदय आए, पुण्य का उदय आए तो हमारा काम हो, पुण्य का उदय आए तो हमारा काम हो। लेकिन एक मार्मिक बात आपको कहना चाहता हूँ, कल भी थोड़ी बहुत बात करूंगा, अभी मेरे को तीन कर्म हैं जिनकी चर्चा मुझे करनी है, कल करेंगे अपन विस्तार से, थोड़ा थोड़ा लेंगे, आधा आधा घंटा लेंगे तीनों। नहीं, क्या है महत्वपूर्ण बात, आप ये सोचते हैं कि पुण्य बंधे, पुण्य बंधे, पुण्य बंधे का तो काम होगा भैया, क्योंकि इतने दिन से पंडित जी समझा रहे पाप के उदय से काम नहीं होता और पुण्य के उदय से काम होता है, तो पुण्य बांधो। लेकिन ध्यान रखिए, पुण्य बांधने के परिणामों से पुण्य नहीं बनता। अरे ये क्या कह दिया आपने, तीन दिन से बड़ी मुश्किल से तो मन बनाया था कि पुण्य पुण्य बांधना है अपने को, अब तो पुण्य के चक्कर में लगना है, क्योंकि बिजनेस चल नहीं रहा था तो पंडित जी ने बतलाया था कि बिजनेस पुण्य के उदय से चलता है, अपने पुरुषार्थ से नहीं। तो पुण्य कैसे, कि पुण्य मंदिर आने से, तो अपन ने सोचा मंदिर आएंगे तो बिजनेस चलेगा। आप मंदिर आए, आप स्वाध्याय करें, आप चिंतन मनन करें, आप अभ्यास करें, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए नहीं, पुण्य बांधने के लिए नहीं। जो लोग आत्म कल्याण की भावना से धर्म साधन करते हैं उनके पुण्य सहज बंधता है, अपने आप बंधता है। आप समझिए, धान्य के साथ में घास फूस तो अपने आप उग जाता है, और जो घास फूस उगाना चाहते हैं उनको धान्य भी नहीं मिलता और उस क्वालिटी का घास भी नहीं मिलता। इसलिए पुण्य बांधने के चक्कर में न लगे, आत्म कल्याण की भावना भावें, आत्म चिंतन करें, वस्तु स्वरूप का विचार करें, आत्मा परमात्मा कैसे बन सकती है। अरे सोच बड़ी रखो, लक्ष्य बड़ा रखो। लक्ष्य ये नहीं कि दो पैसे कमा लिए फिर वही समस्या छोड़ के जाना है, पता है ना। पता नहीं हो तो बात अलग है, लेकिन पता है हमारे को छोड़ के जाना है, भोग नहीं पाऊंगा, भोगने की सामर्थ्य नहीं है, ले जाने की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास में ले जाने की। तो फिर काय को आसक्ति कम नहीं करते हो, थोड़ी आसक्ति घटाओ, थोड़ा मोह घटाओ, थोड़ी सी उनके प्रति तन्मयता घटाओ, सहज रहो, जो होता है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो। पुण्य कर्म का उदय आए तो उसे भी सहज शांत भाव से स्वीकार करो, पाप कर्म का उदय आए तो उसे भी सहज शांत भाव से स्वीकार करो, क्योंकि यदि आप उसे शांत भाव से और सहज भाव से स्वीकार करेंगे तो भविष्य में आपको अनुकूलताएं सहज मिलेगी। लेकिन मुझे भविष्य की अनुकूलताएं भी नहीं चाहिए, मुझे संसार की अनुकूलताएं नहीं चाहिए, क्योंकि संसार की अनुकूलताएं तो उन्हें चाहिए जिन्हें संसार में रहना हो, मुझे तो संसार में ही नहीं रहना है, मैं क्या करूंगा अनुकूलता का। ये पुण्य का उदय तो उनके लिए कामकारी है ना, जिनको संसार में रहना हो, हमें संसार में नहीं रहना, हमें तो मुक्ति प्राप्त करना है। ये पुण्य का उदय क्षणिक सुख दिला सकता है, इस पुण्य के उदय पे मत रीझना, क्योंकि यदि पुण्य का उदय आएगा तो अल्प काल में पाप का उदय भी अवश्य आएगा। ये संसार है, इसलिए पुण्य की चाह, इसका मतलब प्रकारांतर से पाप की चाह। धर्म साधन करो, पुण्य तो बनेगा अपने आप में, उस क्वालिटी का बनेगा, चक्रवर्ती जैसे पद मिलेंगे, चरणों में आकर के लौटेंगे, उस जाति का पुण्य मिलेगा। धर्म करो, आत्मा आराधना करो, आत्मा कौन है, मैं कौन हूँ, सच में हूँ कौन मैं, कहीं से दिखता हूँ, मिरर के सामने खड़ा हुआ, यही मैं हूँ। मैं परमात्मा कैसे बन सकता हूँ? परमात्मा अवस्था की प्राप्ति मुझे कैसे हो सकती है? जगत में कोई शरण नहीं है, न पैसा शरण है, न परिवार शरण है, एकमात्र त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा ही शरण है। जिस तरह से जहाज का पंछी उड़ करके फिर दोबारा समुद्र में चल रहा है जहाज, और उड़ करके बहुत दूर तक जाता है, कहीं कोई सहारा नहीं मिलता, लौट करके एकमात्र वही जहाज शरणभूत है, वही आकर के बैठना है। इसी तरह से तीन लोग तीन काल में, कोई दूसरा शरणभूत नहीं है। इसलिए सबसे दृष्टि हटाओ और अपने में दृष्टि लगाओ, क्योंकि अपने अलावा और कहीं आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। अपने में आओ और सुख प्राप्त करो। आप सभी इन कर्मों से दृष्टि हटाएं, अपने में आए, सच्चे सुख की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से बात को विराम देता हूँ। ओम शांति।
स्वरूप समझा देना, स्वामियों दुख अनंत, समझाव्यूं ते पद नमो। श्री सद्गुरु भगवंत परम ज्ञान सुख रुनाम, देह क्षता जैनी दशा, वर्ते देहाती ते हानी ना चरणवा, वंदन अगनी।